लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस ने उपस्थित विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
Il Vangelo della liturgia odierna racconta che due discepoli, Giacomo e Giovanni, chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a Lui nella gloria.
आज का सुसमाचार पाठ बतलाता है कि दो शिष्य याकूब और योहन प्रभु से आग्रह करते हैं कि वे एक दिन महिमा में उनके दाएं और बाएं बैठ सकें, एक प्रधानमंत्री की तरह, किंतु दूसरे शिष्य इससे क्रुद्ध हो जाते हैं। इस बिंदु पर यीशु धीरज से उन्हें एक महान शिक्षा देते हैं।
La vera gloria non si ottiene elevandosi sopra gli altri.
सच्ची महिमा दूसरों से ऊपर होकर प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि उस बपतिस्मा का अनुभव करते हुए की जा सकती है जिसको वे कुछ दिनों बाद यरूशलेम में प्राप्त करने वाले थे। इसका अर्थ क्या है? संत पापा ने कहा, बपतिस्मा शब्द का अर्थ है डुबकी लगाना। अपने दुख भोग से यीशु ने मौत में डुबकी लगाई और अपना जीवन हमें बचाने के लिए अर्पित कर दिया। अतः उनकी महिमा ईश्वर की महिमा प्रेम में है, जो सेवा बन गई, ना कि शक्ति जो शासन करती है। यही कारण है कि यीशु अपने शिष्यों को और हमें भी कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। महान बनने के लिए सेवा के रास्ते पर चलना है, दूसरों की सेवा करनी है। संत पापा ने कहा, हम दो तरह के तर्क के सामने हैं। शिष्य ऊपर उठना चाहते हैं और यीशु डुबकी लगाना। हम इन दो क्रियाओं पर थोड़ी देर चिंतन करें। पहला है उठाया जाना, यह दुनियावी मानसिकता को प्रकट करता है जिसके प्रलोभन में हम हमेशा पड़ते हैं। सभी चीजों को जीने, रिश्ते, अपनी आकांक्षाओं को ईंधन देने, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने और महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुँचने आदि के द्वारा। व्यक्तिगत संपत्ति की खोज आत्मा के लिए एक बीमारी बन सकती है, जो उसे सदिच्छा के मुखौटे में छिपा सकती है। उदाहरण के लिए, हम भले कार्य करते किंतु उसके पीछे केवल अपनी आप की खोज करते हैं और अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं। कलीसिया में भी हम आगे जाते और इसी की खोज करते हैं। कितनी बार हम ख्रिस्ते, जिन्हें सेवक बनना है, ऊपर चढ़ने और आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। यही कारण है कि हमें हृदय से सच्चे मकसद की हमेशा जांच करनी है। हमें अपने आप से पूछना है, मैं क्यों इन कार्यों और जिम्मेदारियों को कर रहा हूँ? सेवा देने के लिए अथवा पहचान, प्रशंसा या सराहना पाने के लिए? यीशु का तर्क इस दुनियावी तर्क के ठीक विपरीत है। वे नीचे उतरते हैं ताकि सेवा कर सकें, ना कि दूसरों के ऊपर हों। उन्होंने दूसरों के जीवन के लिए अपने आप को अर्पित किया। संत पापा ने कहा, मैं उनकी छवि में कार्यक्रम देख रहा था कि उसके द्वारा उदास सेवा की जाती है ताकि कोई भी बिना भोजन के ना रहे। उन्होंने कहा, हमें दूसरों की भूख की चिंता करना है, दूसरों की जरूरतों के बारे सोचना है। आज अनेक लोग जरूरतमंद हैं और महामारी के बाद उनकी संख्या बढ़ गई है। देखें और सेवा के लिए रुकें एवं अपनी महिमा के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। दूसरी क्रिया है अपने आप को डुबाना। यीशु हमें गोता लगाने के लिए कहते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह गोता लगाना है। हम दूसरों के जीवन में करुणा के द्वारा गोता लगा सकते हैं। हम कई लोगों को भूखे देखते हैं, किंतु जब हम भोजन के सामने होते जो ईश्वर का वरदान है और जिसको हम ग्रहण करते हैं, क्या हम उन लोगों को सहानुभूति से याद करते हैं जो काम तो करते किंतु पर्याप्त भोजन नहीं कर सकते? आइए हम उनके बारे सोचें तथा करुणा के साथ अपने आप को दूसरों के लिए अर्पित करें। संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, क्या मुझ में लोगों के प्रति सहानुभूति है? उन लोगों के प्रति सहानुभूति जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जैसा कि यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए और सभी के लिए किया। वे दया से हमारे पास आए। हम क्रूसित यीशु को देखें जो हमारे घायल इतिहास में प्रवेश किए। हम देखते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में ऊपर नहीं चढ़े, बल्कि अपने आप को दीन बनाकर हमारा पैर धोया। ईश्वर प्रेम है और प्रेम विनम्र होता है। यह ऊपर नहीं उठता, बल्कि नीचे उतरता है, वर्षा की बूंदों की तरह जो धरती पर पड़ती और जीवन देती है। यीशु की दिशा में हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? संत पापा ने कहा, एक उद्भाव से गोता लगाने की ओर बढ़ने के द्वारा, प्रतिष्ठा एवं दुनियादारी से सेवा की ओर एवं ख्रिस्तता की ओर बढ़ने के द्वारा, इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, किंतु सिर्फ इतना काफी नहीं है। अकेला यह कठिन एवं असंभव है, किंतु हम में जो शक्ति है वह हमें मदद देता है। वह बपतिस्मा की शक्ति है, यीशु में डुबकी लगाना है, जिसको हम सभी ने कृपा द्वारा प्राप्त किया है और जो हमारा मार्गदर्शन करता है उनका अनुसरण करने के लिए हमें बल देता है, हमारी रुचि की खोज करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सेवा में लगाने के लिए। यह एक कृपा है, एक आग है, जिसको पवित्र आत्मा हम में प्रज्वलित करता है और जिसको पोषित किया जाना है। आज हम पवित्र आत्मा से याचना करें कि वे हम में बपतिस्मा की कृपा, यीशु में डुबकी लगाने को नवीकृत कर दें, ताकि हम सच्चे सेवक बन सकें, जैसा कि वे सेवा द्वारा हमारे लिए सेवक बन गए। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें, जो महान होने पर भी ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रभु की विनम्र सेविका बनी और हमारी सेवा में अपने आप को पूरी तरह डुबा दिया। हमें यीशु से मुलाकात करने में मदद दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद करते हुए कहा, आज एड टू द चर्च इन नीड फाउंडेशन पलियों, स्कूलों और परिवारों को एक पहल के साथ अवसर दे रहा है, जिसमें एकता एवं शांति के लिए 1 मिलियन बच्चे रोजरी करेंगे। संत पापा ने कहा,
इनकोराजो क्वेस्टा कंपेनिया डी प्रेगेरा के क्वेस्टानो इन मोडो पार्टिकुलारे Si affida all'intercessione di San Giuseppe.
मैं इस प्रार्थना अभियान को प्रोत्साहन देता हूँ, जिसको इस साल खास रूप से संत जोसेफ को समर्पित किया गया है। इसमें भाग लेने वाले सभी युवक युवतियों को धन्यवाद। उसके बाद संत पापा ने फादर जुआन एलियस एवं 126 साथी शहीदों की धन्य घोषणा की याद की। उन्होंने कहा,
Ieri a Cordova, in Spagna, sono stati beatificati il sacerdote Juan Elias Medina e 126 compagni martiri.
कल स्पेन के कोर्डोबा में फादर जुआन एलियस और उनके 126 साथी शहीदों की धन्य घोषणा हुई। पुरोहितों, धर्म बहनों, सेमिनरी के छात्रों एवं लोक धर्मियों को स्पेन में धर्म के नाम पर हुई हिंसा में विश्वास के कारण मार डाला गया था। उनकी निष्ठा हम सभी को शक्ति प्रदान करे, विशेषकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अत्याचार सह रहे ख्रिस्तियों को साहस के साथ सुसमाचार का साक्ष्य देने की शक्ति मिले। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्यों को सम्मानित किया। तत्पश्चात संत पापा ने नॉर्वे, अफगानिस्तान और इंग्लैंड में पिछले सप्ताह हुए हमले की याद की। मौत के शिकार लोगों के परिवार वालों और घायलों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया। उन्होंने जोरदार अपील करते हुए कहा, कृपया हिंसा के रास्ते को छोड़ें, जिससे हमेशा हानि होती है, जो सभी की हार है। हम याद रखें कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। तब अंत में संत पापा ने रोम एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने खासकर पारिस्थितिक न्याय के लिए ख्रिस्तीय एकता के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया, जो कोप 26 जलवायु सम्मेलन के अवसर पर पोलैंड के स्कॉटलैंड की यात्रा पर हैं। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
पर फावोरे नॉन डिमेंटिकातेवी डी प्रेगारे पर मे बुन प्रांसो ए अरिवेडर्ची।
महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 18 अक्टूबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कैंपस बायोमेडिको फाउंडेशन के करीब 50 प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने वाटिकन में उनकी उपस्थिति और उपहार के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर पाओलो अरुलानी के परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, संत लूकस चिकित्सक के पर्व दिवस पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना अच्छा लगता है, जिसे प्रेरित संत पौलुस प्रिय चिकित्सक कहा करते थे। संत पापा ने कहा कि रोम के कैंपस बायोमेडिको के बारे में मैं कुछ जानता हूं, अतः आपसे मिलने के प्रस्ताव को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। मुझे पता है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना कितना मुश्किल है, खासकर जब जैसा कि आपके पोली क्लिनिक में होता है, हमारा लक्ष्य न केवल सहायता करना है बल्कि अनुसंधान पर भी है, ताकि बीमारों को सबसे उपयुक्त उपचार प्रदान किया जा सके, और इससे ऊपर यह सब व्यक्ति के लिए प्यार से किया जाता है। रोगी को रोग से पहले रखना चिकित्सक के हर क्षेत्र में यह आवश्यक है। धन्य अल्वारो डेल पोर्टिको ने आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर दिन अपने आप को पूरी तरह से मानव व्यक्ति की सेवा में लगाने के लिए हम आपके आभारी हैं। संत पापा ने कहा कि व्यक्ति की केंद्रीयता जो सहायता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का आधार है, लेकिन शिक्षण और शोध में भी आपको एकात्मक सहक्रियात्मक दृष्टि को मजबूत करने में मदद करती है। एक ऐसी दृष्टि जो विचारों, तकनीकों और परियोजनाओं को पहले स्थान पर नहीं रखती, बल्कि ठोस व्यक्ति रोगी को उसकी कहानी से मिलने और उसके अनुभव को जानने, दिल को ठीक करने वाले मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए इलाज किया जाता है। मनुष्य के लिए प्रेम, विशेष रूप से उसकी नाजुकता की स्थिति में, जिसमें सूली पर चढ़ाए गए यीशु की छवि चमकती है, एक ख्रिस्तीय वास्तविकता के लिए विशिष्ट है और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। और संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को विभिन्न मुद्दों को लेते हुए 3 ट्वीट किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने रविवार ये पाठ का चिंतन करते हुए अपने संदेश में लिखा, यीशु हमें उन लोगों के जीवन में जिनसे हम मिलते हैं करुणा के साथ पेश आने के लिए कहते हैं, जैसा उसने हमारे साथ किया है। ईश्वर प्रेम है और प्रेम विनम्र है। वे अपने आप को ऊंचाई में नहीं रखते, बल्कि उस बारिश की तरह उतरते हैं जो पृथ्वी पर गिरती है और जीवन लाती है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने पर्यावरण की सुरक्षा और गरीबी से लड़ने के लिए रणनीतियां बहाल करने और उन्हें कार्य रूप करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, पर्यावरण और सामाजिक संकट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए उन्हें हल करने की रणनीतियां गरीबी से लड़ने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करती हैं, बहिष्कृत लोगों की गरिमा बहाल करती है और साथ ही प्रकृति की रक्षा करती है। और धर्माध्यक्षों की धर्म सभा 2023 की तैयारी हेतु विश्व के सभी धर्म प्रांतों में धर्म सभा की शुरुआत रविवार 17 अक्टूबर को हुई। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से पवित्र आत्मा की आवाज सुनने हेतु अपने आप को खोलने के लिए प्रेरित किया। संदेश में संत पापा ने लिखा, प्रिय भाइयों और बहनों, आपका सफर मंगलमय हो। हम पवित्र आत्मा के आश्चर्यों, मुलाकात की कृपा, पारस्परिक श्रवण और विवेक के लिए खुले हों, खुशी से आश्वस्त हों, जैसे कि हम प्रभु की तलाश करते हैं। वे हमेशा अपना प्यार लिए हमसे पहले मिलने आते हैं। आज 18 अक्टूबर को एड टू द चर्च इन नीड द्वारा आयोजित अभियान में विश्व भर से लाखों बच्चे रोजरी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट कर बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आज दुनिया भर में हजारों बच्चे एड टू द चर्च इन नीड द्वारा आयोजित अभियान में भाग ले रहे हैं, एकता और शांति के लिए रोजरी माला की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम उनके साथ मिलकर माता मरियम से उसी तरह प्रार्थना करें जिस तरह इन छोटों का विश्वास हमारी स्वर्गीय माता पर है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, हर दिन दृढ़ता से रोजरी प्रार्थना का पाठ करते हुए हम एक दूसरे से और माता मरियम से मिल सकते हैं। उनसे हम सीख सकते हैं कि हम में से प्रत्येक के लिए ईश्वर के पास जो मुक्ति की योजना है उसमें पूरी तरह से सहयोग कैसे करें। 10 लाख बच्चे रोजरी प्रार्थना करते हुए शांति के लिए अभियान 18 अक्टूबर को वार्षिक पहल का आयोजन एड टू द चर्च इन नीड द्वारा किया गया है। यह एक परम धर्म पीठीय संगठन है। दुनिया भर के बच्चे अपने समकक्षों को दुनिया में शांति और एकता के लिए रोजरी प्रार्थना अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष की पहल 10 लाख बच्चे प्रार्थना करते हुए रोजरी में 1,81,000 से अधिक बच्चे पहले ही नामांकित हो चुके हैं। वार्षिक अभियान एड टू द चर्च इन नीड ACN द्वारा आयोजित किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रेरितिक सहायता संगठन है, जो दुनिया भर में 140 से अधिक देशों में 5,000 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दुनिया भर के धर्म प्रांतों, मिशन और पल्लियों के ईमेल और संदेश ACN के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों और प्रधान कार्यालय में आ रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि प्रतिभागियों की आधिकारिक संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक होगी। 10 लाख बच्चे प्रार्थना करते हैं अभियान का विचार 2005 में वेनेजुएला की राजधानी काराकस में पैदा हुई, जब कई बच्चे रास्ते के किनारे तीर्थालय में रोजरी माला की प्रार्थना कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ महिलाओं को कुंवारी माता मरियम की उपस्थिति का गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने संत पादरे पियो के शब्दों को याद किया, जिन्होंने बच्चों के एक समूह को रोजरी प्रार्थना करते हुए देखकर टिप्पणी की थी, जब 10 लाख बच्चे रोजरी प्रार्थना करते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। इस वर्ष का अभियान माता मरियम के साथ और संत जोसेफ के संरक्षण में बच्चों को रोजरी प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।